लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र बच्चों और विशेष रूप से पीड़ित बच्चों के भविष्य को प्राथमिकता देने हेतु आवश्यक उपाय करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत युवाओं के संबंध में धर्माधीक्षकों की धर्माध्यक्षीय धर्म सभा 2018 युवा विश्वास और बुलाहटीय मंथन पर एक चर्चा सुन रहे हैं। श्रोताओ, यूखरिस्तीय बलिदान हमारे लिए एक सामुदायिक जीवन और कलिसियाई सिनोडालिटी की शुरुआत करती है। यह हमारे लिए वह स्थल बनती है जहां हम विश्वास और प्रेरिताई की शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो हमारे लिए इस बात को सत्यापित करती है कि कलीसिया कृपाओं के कारण जीवित रहती है, न कि मानव के हाथों द्वारा किए गए कार्यों के कारण। पूर्वी रीति की परंपराओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि धर्म विधि में हमारा मिलन दिव्य सेवक से होता है, जो हमारे घावों की चंगाई करते और हमें अपने भोज में शामिल करने हेतु तैयार करते हैं। वे हमें अपने भाइयों और बहनों के बीच स्वयं अपने इस कार्य को पूरा करने हेतु भेजते हैं। अतः हमें अपने में इस बात को स्वीकारने की जरूरत है कि प्रतिबद्धता में एक सादगी जीवन कलिसा के कार्यों में संलग्न लोक धर्मियों संग इस समारोह को मनाने हमारे लिए प्रेरित परिवर्तन का एक अनिवार्य तत्व बनता है। युवाओं ने मिस्र बलिदान में अपनी सहभागिता के माध्यम अपनी गहरी रुचि को व्यक्त किया है, जो प्रभु वचन के उद्घोषण में तैयारी और समुदाय की सहभागिता स्वरूप हमारे बीच ईश्वरीय उपस्थिति की सुंदर निशानी को व्यक्त करती है। अतः हमें चाहिए कि हम मिस्र बलिदान में युवाओं की सक्रिय सहभागिता पर बल दें। साथ ही हम इस बात का भी ख्याल करें कि वे धर्म विधि को सिर्फ अपने संगीत और व्यक्तिगत कलात्मक संवेदनशील अभिव्यक्ति तक ही सीमित न रखें, वरन वे इसे कलिसिया और ईश्वर के कार्य स्वरूप भी समझने हेतु अपने को खुला रखें। इसके अलावे हम युवाओं को यूखरिस्तीय आराधना के महत्व को जानने में मदद करें, जो धर्म विधि का एक विस्तृत स्वरूप है, जहां हम अपने को शांतिमय प्रार्थना में ईश्वरीय उपस्थिति में लाते हैं। मेल मिलाप संस्कार का हमारे विश्वास के जीवन में एक अति महत्वपूर्ण स्थान है। युवा अपने जीवन में प्रेम पाने की चाह रखते हैं। वे क्षमा किए जाने और मेल मिलाप की आशा करते हैं। वे दयालु पिता के आलिंगन हेतु अपने में आतुर रहते हैं। अतः पुरोहितों को चाहिए कि वे इस संस्कार के निष्पादन हेतु अपने को उदारता में तैयार रखें। सामुदायिक रूप में पश्चाताप की धर्म विधि युवाओं को व्यक्तिगत रूप से इस संस्कार में सहभागी होने हेतु मदद करती है, जहां वे अपने में कलिसियाई आयाम को व्यक्त करते और इसके अंग बनते हैं। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां लोकप्रिय धार्मिकता का अभ्यास युवाओं में विश्वास के जीवन को पोषित करता और वे इसे ठोस रूप में जीने के योग्य बनते हैं। लोकप्रिय धार्मिकता युवाओं को अपने शरीर की भाषा का महत्व और उसमें प्रभावकारी ढंग से सहभागी होने में मदद करती है, जहां वे माता मरियम और संतों के जीवन पर चिंतन करते हुए मुक्तिदाता ईश्वर के संग एक संबंध में प्रवेश करते हैं। तीर्थ यात्रा युवाओं को कलिसियाई जीवन की यात्रा का अंग बनने में मदद करती है, जहां वे सृष्टि की सुंदरता और कला के बारे में चिंतन करने का अवसर प्राप्त करते, जो उन्हें भ्रातृत्व में प्रवेश करते हुए यीशु ख्रिस्त में अपने संबंध को मजबूत करने के साथ साथ जीवन के आत्म परीक्षण में मददगार सिद्ध होता है। युवा अपने जीवन में सेवा की जीवन शैली में परिवर्तन लाते हुए पल्ली समुदाय की सेवा करने तथा अपने निकटवर्ती पल्ली में एक भाईचारे की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। गरीब युवा जो अपनी गरीबी के कारण बहुत अधिक दुख सहते हैं, उनके साथ अपने को संयुक्त करते हुए युवागण एक नए समुदाय का निर्माण करते हैं। उन्हें सुसमाचार प्रचार की विषय वस्तु को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि यह उन्हें दुनियादारी की आध्यात्मिकता से मुक्त होने में मदद करती है। बहुत बार युवा सेवा के आयाम से अपने को संवेदनशील पाते हैं। बहुत से युवा हैं जो सक्रिय रूप से स्वयंसेवी कार्यों में अपने को संलग्न करते और वे अपने इस सेवा कार्य में यीशु से अपने मिलन की अनुभूति का एहसास करते हैं। समाज में सबसे नीचे तबके के लोगों की सेवा इस भांति विश्वास के जीवन को कार्यान्वित करने का एक तरीका बनता है, जहां वे अपने खोने के द्वारा सुसमाचार का केंद्र बिंदु और पूरे ख्रिस्तीय जीवन के सार को अपने में अंगीकृत करते हैं। गरीब, दबे हुए, बीमार, बुजुर्ग यीशु ख्रिस्त के दुखदायी शरीर के अंग हैं। अतः अपने जीवन में उनकी सेवा करना हमें स्वयं यीशु ख्रिस्त से मिलने और हमारी बुलाहट के आत्म परीक्षण में हमें एक सहायता प्रदान करती है। विभिन्न संदर्भों के आधार पर यह हमें प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए अपने को खुला रखने की मांग करता है। हमें उन्हें अपने जीवन में स्वीकारने, सुरक्षा बढ़ावा देने और समाज का अंग बनने में मदद करने की जरूरत है। समाज के गरीबों को अपने में शामिल करने के द्वारा कलीसिया करुणा का एक निवास स्थल बनती है। युवाओं को आकर्षित करने का एक अति विशिष्ट माध्यम युवाओं के बीच प्रेरिताई और ख्रिस्तीय सामुदायिक जीवन है, जहां हम अपनी ओर से उनके संग एक संबंध में प्रवेश करते हैं। ऐसा करने के द्वारा कलीसिया उन्हें इस बात को स्पष्ट कराती है कि वह उनका स्वागत करती है, जो युवाओं में कलीसिया के प्रति विश्वास और भरोसा के भाव को सुदृढ़ बनाता है। युवाओं के संबंध में भ्रातृत्व की तमन्ना जो धर्म सभा में कई बार उभर कर आई, कलीसिया को बहुतों के लिए एक शरण स्थल बनने की मांग करती है, जो माता की तरह लोगों का स्वागत करती है। अतः युवा प्रेरिताई विश्व कलीसिया के इतिहास में हमें इस बात की याद दिलाती है कि हम ठोस रूप में अपनी प्रेरिताई को खुशी पूर्वक ठोस कार्य में व्यक्त करने हेतु बुलाए जाते हैं, जो युवाओं के लिए एक निवास स्थल बनती है। व्यवसाय वह काज है जिसके चारों ओर व्यक्ति के सभी आयाम एकीकृत होते हैं। यह सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत रूप से किसी के लिए लागू होता है, बल्कि यह संपूर्ण रूप से युवा प्रेरिताई को अपने में समाहित करता है। अतः यह स्पष्ट करना अपने में अति महत्वपूर्ण है कि बुलाहटीय आयाम के संदर्भ में प्रेरिताई कार्य अपने में एक एकीकृत सिद्धांत को प्राप्त करता है, जहां हम इसके उद्भव और परिपूर्णता को पाते हैं। प्रेरिताई कार्य के परिवर्तन में इस भांति कोई भी इसे एक अलग और स्वतंत्र कार्य स्वरूप ना ले, वरन यह पूरी कलीसिया का एक सजीव प्रेरितिक कार्य बने, जो बुलाहटों को एक प्रभावकारी ढंग से प्रस्तुत करेगा। प्रेरिताई कार्य का उद्देश्य आत्मनिरीक्षण के माध्यम सबों की सेवा करना है, जहां हम यीशु ख्रिस्त के समान अपनी मानवीय पूर्णता को प्राप्त करते हैं।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 2 दिसंबर के ट्वीट संदेश में भाई बहनों की मदद करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने संदेश में लिखा, प्रभु के साथ करीबी हमारे हृदय को निमंत्रण देता है कि हम अपने भाई बहनों के पास प्रेम से जाएं, सभी लोगों के प्रति अपनी करुणा प्रदर्शित करें। उन्होंने 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर अपने संदेश में लिखा, आज हम अपनी प्रतिबद्धता को नवीकृत करें, जिससे कि हर दिव्यांग व्यक्ति भी समुदाय में अपना योगदान दे सके, जहां वह रहता और जिस समुदाय में आता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने याद किया कि भेदभाव का सामना करने और मुलाकात तथा जीवन की गुणवत्ता को प्रोत्साहन देने हेतु सहभागिता का अधिकार किस तरह मुख्य भूमिका अदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के लिए प्रेषित अपने संदेश में संत पापा ने लिखा कि मेडिकल एवं कल्याण विभाग में विकलांग लोगों के लिए बड़ी प्रगति हुई है, किंतु उन्होंने गौर किया कि आज भी नष्ट करने की संस्कृति जारी है और अनेक विकलांग व्यक्ति उसे महसूस कर सकते हैं कि उन्हें संबंध रखने एवं सहभागी होने से रोक दिया जाता है। संत पापा ने जोर दिया कि यह न केवल दिव्यांग लोगों के अधिकारों और उनके परिवारों की रक्षा की मांग करता, बल्कि पूर्वाग्रह को हटाने के लिए विश्व को अधिक मानवीय बनाने की भी मांग करता है। वैटिकन स्थित प्रेरितिक आवास संत मार्था के प्रार्थनालय में मंगलवार को ख्रिस्त्याग अर्पित करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि सिर्फ विनीत हृदय में ही ईश्वर का आत्मा विराजमान हो सकता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर की प्रकाशना हमेशा दीनता से उत्पन्न होती है, जिसका अर्थ ये नहीं है कि अपने आप में बंद हो जाना, बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखना और जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना। संत पापा फ्रांसिस ने 3 दिसंबर के प्रवचन में नबी साइस के ग्रंथ से लिए गए पाठ पर चिंतन किया, जिसमें छोटी चीजों पर ध्यान आकृष्ट किया गया है। नबी साइस कहते हैं, यीशु के घर से एक टहनी निकलेगी जिसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा, प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। संत पापा ने कहा कि ईश्वर दीनहीन लोगों की प्रशंसा करते एवं एक टहनी की प्रतिज्ञा करते हैं। एक टहनी से छोटा और क्या हो सकता, फिर भी ईश्वर का आत्मा उस पर छाया रहेगा। संत पापा ने बतलाया कि वे पाप स्वीकार सुनना बहुत पसंद करते हैं, विशेषकर बच्चों का। उन्होंने कहा कि उनका पाप स्वीकार बहुत सुंदर होता है, क्योंकि वे ठोस रूप में बातों को रखते हैं। यह हमारे लिए एक उदाहरण हो सकता है कि हमें भी किस तरह ईश्वर के पास जाना चाहिए। हमें प्रभु से कहना चाहिए कि प्रभु, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है। यही हमारी दीनता है। अंत में संत पापा ने विश्वासियों को प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा, हे ईश्वर, मुझे पौत्रात्मा की शक्ति प्रदान कर, ताकि मेरे जीवन में बड़े कार्यों को करने से ना डरूं। संत पापा फ्रांसिस ने पेशेवर जीवन में सुसमाचारी साक्ष्य की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सोमवार को वैटिकन में फ्रांस के युवा काथी व्यापार नेताओं एवं उद्यमों के एक दल से मुलाकात की। यह दल आम हित के लिए एक यात्रा शीर्षक के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए रोम में एकत्रित है। सम्मेलन का उद्देश्य है लोगों के व्यक्तिगत एवं पेशेवर जीवन में काथिक सामाजिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना। अपने संबोधन में संत पापा फ्रांसिस ने दल का स्वागत किया एवं व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में कलीसिया की सामाजिक शिक्षा का पालन करने की अभिलाषा के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने स्वीकार किया कि सुसमाचार की मांग एवं व्यापार या पेशे की मांग पर सामंजस्य स्थापित करना आसान नहीं है। उन्होंने कहा, किंतु सुसमाचारी मूल्यों, जिन्हें उद्यमों एवं प्रबंधकों द्वारा अपने व्यवसायों में लागू करने की उम्मीद की जाती है, सच्चा और अपूर्णीय ख्रिस्त साक्षर का अवसर प्रदान करता है। संत पापा की उम्मीद है कि आम हित के लिए यात्रा के सम्मेलन के प्रतिभागियों को कर्तव्यनिष्ठ निर्णय लेने हेतु आत्म जांच करने में मदद देगा। उन्होंने वैटिकन द्वितीय महासभा के दस्तावेज गाउडियम एट स्पेस की शिक्षा को रेखांकित किया, जो लोक धर्मियों को ख्रिस्त प्रज्ञा के प्रकाश में एवं कलीसिया के दस्तावेज का सम्मान के साथ अपने ही क्षेत्र में जिम्मेदारपूर्ण साक्ष्य देने का प्रोत्साहन देता है। व्यापारियों एवं उद्यमों को संबोधित करते हुए संत पापा ने पारिस्थितिक बदलाव के महत्व पर प्रकाश डाला तथा प्रार्थना एवं चिंतन करने हेतु अपने प्रेरितिक विषय पत्र लौदातो सी की अनुशंसा की। उन्होंने कहा कि यद्यपि सांस्कृतिक परिवर्तन में समय लगता है, किंतु विनयपूर्ण ठोस परिवर्तन लाने, एक नए तरीके से काम करने हेतु विश्व को सीख देने में व्यापारियों एवं उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने उन्हें स्मरण दिलाया कि पर्यावरणीय परिवर्तन को आध्यात्मिक परिवर्तन से जुड़ा होना चाहिए। उन्होंने उनका आह्वान किया कि वे उपभोक्तावाद की अपेक्षा सादगी और संयम के लिए प्रतिबद्ध हों, ताकि जीवन की सच्ची सराहना की जा सके। सरलता नीचे उतरने एवं छोटी चीजों का स्वाद लेने के लिए प्रेरित करता है। उन संभावनाओं के लिए धन्यवाद देने जो हमारे पास है, अथवा उनके लिए दुखी नहीं होने जो हमारे पास नहीं है। संत पापा फ्रांसिस की अभिलाषा एवं नवीन ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की सहायता से बुधवार को राजनीतिक शरण खोजने वाले 33 शरणार्थी ग्रीस के लेस्बोस से इटली पहुंचेंगे। संत पापा के अनुदान विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी कर बतलाया कि कार्डिनल क्राजेवोस की जो सोमवार को लेस्बोस के लिए प्रस्थान किए, वे 4 दिसम्बर को 33 शरणार्थियों के साथ रोम लौटेंगे। कार्डिनल के साथ इजिप्तियो समुदाय के कुछ नेता भी गए हैं। अन्य 10 शरणार्थियों को इस साल के अंत में लाया जाएगा। संत पापा के प्रतिनिधि के रूप में कार्डिनल कॉनराड विगत मई महीने में लेस्बोस गए थे। इसके पूर्व 16 अप्रैल 2016 को संत पापा फ्रांसिस ने लेस्बोस की यात्रा कर मोरिया शरणार्थी शिविर का दौरा किया था, जिसके बाद वे सीरिया के 3 परिवारों के साथ रोम लौटे थे। मई महीने में अनुदान विभाग के अध्यक्ष को लेस्बोस भेजने के द्वारा संत पापा फ्रांसिस ग्रीक वासियों एवं शरणार्थियों के प्रति अपने सामीप्य को नवीकृत करना चाहते थे, और साथ ही साथ अफगानिस्तान, कैमरून और तोगो के कुछ युवा शरणार्थियों और परिवारों का स्वागत करने के द्वारा अपने एकात्मकता के भाव को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए प्रासंगिक निकायों के बीच यात्रा पर गहन आधिकारिक बातचीत के बाद इटली के अंतरिम मंत्री ने कार्य को आगे बढ़ाने की अंतिम मंजूरी दी। इन शरणार्थियों का स्वागत भी परमधाम पीठ के प्रेरितिक अनुदान विभाग एवं संत इजिदियो समुदाय के खर्च पर किया जाएगा। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।